चलिए देखते हैं इंशाल्लाह ताला। तफसीर आज की, पिछले लेसन से हमने बहुत कुछ सीखा, बहुत सारी बातें। ये हमें पता चला कि औरतों के साथ क्या सलूक होना चाहिए मर्दों का। हमने ये देखा कि एक दूसरे के ऊपर कैसे आपस के अंदर हकूक और फराइज हैं। नेक बीबियां कौन होती हैं, मर्दों की क्या जिम्मेदारी होती है, अल्लाह ताला ने उनको कवाम क्यों बनाया है। फिर हमने ये भी देखा कि अगर झगड़ा हो जाए आपस में तो क्या करना चाहिए। फिर हमने देखा किन किन के साथ हमें एहसान के रवैये रखने हैं। ये आयत बड़ी इंपॉर्टेंट थी और इसके बड़ा आपको सोचने की ज़रूरत है कि इनमें हम किस तरह से एहसान के रवैये के साथ चल रहे हैं इन लोगों के साथ जिनके भी जिक्र आए यहाँ पे। फिर अल्लाह ताला को शेखी खोरे और इस तरह के लोग पसंद नहीं है जो फख्र बड़ा करते हैं, और फिर बुखल अल्लाह ताला को नहीं पसंद है कि कोई बखील हो। और हमने ये भी अंजाम पढ़ा कि जो रियाकारी करता है खर्च करने में या किसी भी चीज़ में, वो किसका साथी है। फिर हमने बहुत इम्पोर्टेंट बात गुसल और तयम्मुम के हवाले से भी देखी है कि गुसल और तयम्मुम किन हालतों में किया जा सकता है और कैसे करना चाहिए गुसल और तयम्मुम। आज हम भी बहुत अहम मौजूआत को कुछ देखेंगे। पर उन्दुर कैफ यफ्तरून अलल्लाहिल कदिब व कफा बिही इस्म मुबीना। देखो तो सही इनको कैसे झूठ गढ़ते हैं अल्लाह के ऊपर, कैसे झूठ गढ़ा इनने। ये असल में यहूद की जैसे बात पीछे से चल रही है कि कहते हैं हम तो बख्शे बख्शाए हैं, हम तो अल्लाह के लाडले हैं, हम तो अल्लाह के बेटे हैं। नहनु अबना उल्लाही व अहिब्बाउ, हम अल्लाह के बेटे भी उसके बड़े ही चहीते हैं, तो हमें क्या होना है। हमने थोड़ी कहीं, हमें थोड़ी कोई सजा मिलनी है, हम तो बख्शे बख्शाए हैं। व कफा बिही इस्म मुबीना, और ये काफी है खुल्लम खुल्ला गुना। ये जो बातें इन्होंने इफ्तरा की हुई है ना कि अल्लाह के ऊपर झूठ बांधना, जो बात अल्लाह ने कही ही नहीं है, और अल्लाह तला के ऊपर लगा के कहना, ये खुल्ला गुना है। इससे क्या, इसमें क्या ढकी छुपी बात रह गई, ये तो खुल्लम खुल्ला एक बड़ा गुना की बात है। और आज अल्लाह के ऊपर किस तरह झूठ बांधे जाते हैं, कोई बात होगी ना, कोई किसी की मर्जी की बात होगी, उसको अल्लाह के ऊपर लगा के, नहीं अल्लाह ताला ने तो ये फरमाया, तुम्हें नहीं पता अल्लाह ताला ने तो ये कहा, अल्लाह का तो ये हुक्म है। हालांकि कहाँ पे वो हुक्म है कोई पता ही नहीं, खुद ही बना बना के सुनी सुनाई बातों को अल्लाह का हुक्म है। अल्लाह के ऊपर बात करने से पहले बहुत सोचना समझना चाहिए कि हम क्या कह रहे हैं, चाहे वो बात कितनी भी सुनी सुनाई हो, लेकिन ये तहकीक जरूर करनी चाहिए कि वाकई अल्लाह ताला का ये हुक्म है, वाकई अल्लाह ताला ने ये फरमाया है। नहीं अल्लाह इतनी भी बातों पे नहीं पकड़ लेगा। ये आपको किसने कहा, कहाँ पे सुना आपने, हाँ, कि अल्लाह तो इतनी इसी बातों पे नहीं पकड़ लेता। अल्लाह चाहे तो किसी बात पे भी पकड़ ले। वो नहीं आपने बात सुनी वो जो एक भाई दूसरे भाई को मना करता होता था कि तुम ना ये काम करो ये काम, वो बस उल्टे सीधे काम करता था जो भी करता था। और फिर एक दिन उसने कह दिया, खुदा की कसम है अल्लाह तुझे नहीं बख्शेगा, तू कभी भी नहीं जन्नत में जा सकता, अल्लाह की कसम है। अल्लाह ताला ने फरिश्ते से कहा दोनों की जान कबज करके ले आओ, उसको कहा तू जा जन्नत के अंदर, और तूने मेरे ऊपर कैसे ये बात कही कि मैं इसको कभी नहीं बख्शूंगा और उसको कभी नहीं जन्नत में दाखिल करूंगा, कैसे तुमने कहा मेरे ऊपर कसम खा के। तो देखिए अब एक बात ही थी ना, वो था तो वो बड़ा नेक और अपनी तरफ से तो वो अमर बिलमारू व नहीं मुनकर कर रहा, लेकिन उसने एक ऐसी बात कही जो अल्लाह ताला ने नहीं कही है, अल्लाह की कसम अल्लाह नहीं तुझे बख्शे। तुम कैसे अल्लाह की कसम खा के अल्लाह के ऊपर कोई बात कर रहे हो, कहा इसको जहन्नुम में ले जाओ। तो हम जब इतने आराम से कई बातें अल्लाह के ऊपर कह देते ना, अल्लाह की कसम इसने तो, अल्लाह ने तो इसको माफ ही नहीं करना, कितने आराम से मुंह से बोल देते हैं। और अल्लाह के ऊपर कितने आराम से बातें करते हैं। अब कहने को कोई कहे मुंह की बात ही थी ना, कोई उसने बुराई तो नहीं की, अल्लाह ने देखो उस बात के ऊपर उसको पकड़ लिया। कभी इंसान मुंह से ही ऐसी बात निकाल देता कि वो हदीस में आता है कि इंसान अपना ठिकाना मशरिक से मगरिब तक जितनी जगह है इतना जमीन वो उसमें अस्तगफुरुल्लाह जहन्नुम के अंदर बना लेता है, इतना दूर अपना ठिकाना बना लेता है। तो कहने को तो क्या हुआ, सो वॉट, एक बात ही मुंह से कही है, मैंने कौन सा कोई बड़ा गुनाह कर दिया, लेकिन वो बात अल्लाह को बहुत बुरी लगी, वो बात अल्लाह को नहीं पसंद आई और उसने बेध्यानी में ऐसे ही कह दी। उसने उसको कोई बड़ी चीज नहीं समझा था, ये भी हदीस में है कि उसने नहीं कोई उसको बड़ी अहमियत से बात नहीं की थी, बड़ा कोई बहुत बड़ा समझ के नहीं कहा था। तो अल्लाह पकड़ना चाहे तो किसी बात के ऊपर भी पकड़ सकता है भाई। ये बेपरवाही से कहना अल्लाह ने दो, किसने कहा अल्लाह ने इस पे पकड़ना, अल्लाह ने नहीं इन बातों पे पकड़ना, तुम्हें क्या पता। तो ये तो एक एग्जाम्पल है, हम इतने सारी चीजें अल्लाह के ऊपर ऐसे ही बोल देते हैं कि जैसे कि कोई परवाह ही नहीं। आप किसी इंसान के ऊपर भी ऐसे बोल देना कि उसने तो ऐसे नहीं करना, या तो वो ऐसे करेगी तो उसको गुस्सा आता है, तो मेरे पर क्यों बातें रख के कह रही हो, और हम अल्लाह की जात पे ऐसे करते हैं। अलम तरा इल्लदीना, क्या आपने देखा नहीं उन लोगों को, यानी एक तरह से ताज्जुब की बात है ना कि जैसे हम कहते हैं हाय तुम्हें पता है ऐसा हुआ, तुमने देखा ये क्या हुआ, तो इस तरह से अलम तरा, तुमने देखा नहीं, इल्लदीना उन लोगों की तरफ, कौन से लोग, ऊतू नसीब मिनल किताब, जो दिए गए किताब, यानी ये बेसिकली बात वही यहूदो नसारा, युमिनून बिल जिप्ति व ताहूत, वो ईमान रखते हैं जिप्त और ताहूत पे। यानी बड़ी हैरत की बात है कि देखो इनके पास किताब है, किताब का एक हिस्सा इनके पास है, फिर भी ये जिप्त और ताहूत के ऊपर ईमान रखते हैं। अच्छा अब क्या चीज है ऐसी जिप्त और ताहूत के भाई, जिसके ऊपर कहा गया कि देखो कितनी हैरत की बात है कि ये ईमान होते हुए, किताब होते हुए, इस किताब पे ईमान रखते हुए, अल्लाह की तरफ से जो किताब उनको मिली है, अल्लाह के कलाम उनके पास है, फिर भी ये जिप्त और ताहूत पे ईमान रखते हैं। तो जिप्त क्या है, सबसे पहले तो जिप्त को देखते हैं। जिप्त है हर बेफायदा चीज, बेअसल चीज, बेहकीकत चीज, फजूल काम, और इसके अंदर वो सारी चीजें आ जाती हैं जिनको के आप कहें जादू टूने, ये जो फालगिरियां होती हैं, नजूमी जो करते हैं, और कहानतें, फॉर्चून टेलिंग, ये सब इसके अंदर आ जाता है। ठीक है, तो जिसको हम कहते हैं सुपरस्टिशियस बातें, वो भी सब इसके अंदर आ जाती है। किस्मत मालूम करने की जितनी भी चीजें हैं वो सारी इसमें आ जाती है। तो यहूदी ना इसके अंदर इन कामों में बड़े तेज थे। आपने देखा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जादू करने में भी यहूद मुलव्वस थे, तो ये जादुओं के अंदर और ऐसी चीजों के अंदर बहुत थे। आपने सूरह बकरा में पढ़ा भी है कि इन्होंने किताब को तो पीछे डाल दिया, जाहिर है जब जिंदगियों में किताब नहीं रहेगी, जो अल्लाह की तरफ से कलाम नाजिल हुआ है वो नहीं रहेगा, तो फिर उसकी जगह यही चीजें ले लेती हैं कि किताब की तरफ तो आना नहीं, अब उसके बाद क्या है, बस वहां से हमारे काम हो जाए, वहां पे क्या है, अब मुस्तकबिल का हाल मालूम कर लें, खुशबख्ती और बदबख्ती किसमें है, फलानी चीज रास्ता काट गई तो काली बिल्ली ने रास्ता काट लिया, अब तो काम होना नहीं, आज का दिन मनहूस है फलाना की। तो ये चीजें तभी आती हैं जब जिंदगी के अंदर किताब ना हो, जब किताब का इल्म आ जाता है ना, तो फिर जिंदगी स्ट्रेट हो जाती है, फिर इंसान इन चीजों के पीछे नहीं जाता। एक हदीस में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह तआला ने अय्याफा और तुर्क, और यानी तुर्क क्या होता है कि ये फालगिरी के जितने भी तरीके हैं, यानी चाहे आप किस्मत के हाल मालूम करने वाली चीजें कह लें, जिनको आज क्या कहते हैं, वो तोता भी निकालता है ना, तोता वो जो कार्ड निकालेगा और फिर वो आप उसी तरह, आपका जो भी आपने पूछा है सवाल उस तरह होता है। आप उस जमाने के अंदर परिंदे उड़ाते थे इधर उधर, उनसे करते थे, तो वो अयाफा था और तुर्क था, जमीन के ऊपर ना लकीरें खींचते थे, और उससे भी किस्मत के हाल। आज भी लोग ऐसे हैं जो जमीन पे तो नहीं शायद खींचते होंगे, मगर वो ये पेपर के ऊपर ना लाइनें खींच के कुछ डब्बे बनाते हैं, और उसके अंदर फिर कुछ लिखते हैं, हिंट से लिखते हैं, फिर उसके से आपको ना हिसाब निकाल के बताते हैं, और ये शगुन लेना, ये बदशगुनियां लेना, ये लेना, इन सारी चीजों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जिप्त है, ये सारी चीजें जिप्त हैं, इसमें शामिल है। तो अल्लाह के अलावा किसी को भी समझ लेना कि ये हमें बताएगा कि आपकी किस्मत का हाल क्या है, ये चीज आपके लिए मुबारक है या मनहूस है, या ये दिन काम करना आपके लिए कैसा रहेगा, सफर करना कैसा होगा, फलां के साथ रिश्ता करना कैसा रहेगा, ये सारी फिर शिर्क में आ जाती है।
क्योंकि अल्लाह ही जानता है गैब का इल्म। अब आपने कहा कि ये चीजें भी बताएंगी मुझे, इसीलिए जादूगर को भी कहा गया, वो भी शिर्क करता है। काहिन की जो बातों के ऊपर बिलीव करता है वो भी शिर्क कर रहा है, और काहिन खुद भी शिर्क करता है। तो इसकी तरफ दोबारा हम आते हैं, पहले ताहूत को भी समझ लें। ताहूत तो ज्ञानी से है, सरकशी, बगावत, हदों को क्रॉस कर देना। इसमें हर वो चीज है जो अल्लाह के दीन से हटा दे। इसका तर्जुमा बाज़ जगह पे आप देखेंगे लिखा होता है माबूदाने बातिल। तो माबूदाने बातिल भी यानी वो ही है कि जो इंसान को अल्लाह के रास्ते से हटा देने वाले, इंसान को अल्लाह ताला की तरफ नहीं जाने देते। तो कोई अमल ताबूत हो सकता है, कोई इदारा ताबूत हो सकता है, कोई माशरा ताबूत हो सकता है, कोई हुकूमत ताबूत हो सकती है, कोई फर्द ताबूत हो सकता है, बुत ताबूत है, अल्लाह की रास्ते से हटा देते हैं ना, तो ये सब ताबूत है। कि देखो इनके पास किताब भी आ गई, तो ये किसकी तरफ भागते हैं? जिब्त और ताबूत की तरफ। हैरत है इनके ऊपर। शायद आज भी अगर किताब उतर रही होती तो ये कहा जाता, देखो इनके पास कुरान भी आ गया फिर भी ये जिप्त में पड़े हैं। आप देख लें कि अपने माशरे में देख लें, जादू टूने ये कितने आम है, और ये एक कारोबार है बाकायदा, जो कि बहुत बहुत सक्सेसफुल कारोबार है, जिसमें आपने देखा होगा लिखा होता है कि 24 घंटे के अंदर ये आपका काम हो जाएगा, आपको जमानत है इसकी कि आपके महबूब कदमों में होगा, फलां का ये हो जाएगा, और पता नहीं क्या क्या इस तरह की खुराफात, तो हम परस्ती, सुपरस्टिशियस बातें और इस तरह की चीजें, इस को हमारे माशरे के अंदर, जो कि एक इस्लामी माशरे में तो कभी होनी ही नहीं चाहिए ऐसी चीज, क्योंकि ये तो इस्लाम से बिल्कुल ही ऑपोजिट चीज है, ये तो शिर्क है, और ये क्या चीजें हो रही हैं। और आप देखें कि फिर इनके इश्तेहार बाकायदा दीवारों पे और पेपर्स, न्यूज़पेपर्स में और टीवी पे इश्तेहार, और कितने इनके आते हैं, क्योंकि ये कारोबार चलते हैं ना, और हमारे लोग यहाँ पे जाते हैं, तो जादू भी चलता है। फिर आप देखें फिर कितने टीवी पे बिठाए जाते हैं आजकल, कौन सी टीम जीतेगी और कौन सी हारेगी, अब वो कार्ड निकाल के बता रहे हैं, कोई दूसरा है वो पता नहीं उसका कोई और तरीका निकालने का, कोई सितारों को देख के बता रहा है, वो और शिर्क क्या होता है। अगर ये कार्ड बताएंगे तुम्हें, या ये लकीरें बताएंगी, या तोते बताएंगे, या कभी कोई पता नहीं किसी ने कहा कि क्या कहीं एक कोई कछुआ है वो बताता है कि कौन सी टीम जीतेगी और कौन सी हारेगी। या रब, यानी गैब का इल्म अब कछुओं को होने लगा, और किस्मतों के हाल ये हाथों की लकीरों के अंदर तलाश करते हैं। तो एक मोमिन को तो अपने आप को इन चीजों से बचा के रखना है, ये कह देना। फिर उसके बाद ये जितनी सुपरस्टिशियस बातें हैं, आप देख लें बिल्ली रास्ता काट ले गई है, आज पता नहीं क्या वो 13 नंबर मनहूस है, ये महीना मनहूस है, इस महीने में ना ये किया जाए, सफर में ना शादी की जाए, मुहर्रम में ना की जाए, फलान में ना की जाए, ये कहाँ से आई। अगर वो फलां जो तलाक हुई भी है, वो अगर लड़की को मेहंदी लगा देगी तो इसकी किस्मत खराब हो जाएगी, अगर बेवा इसके करीब आ जाएगी तो उसकी परछाई पड़ जाएगी, जिसका बच्चा मतलब फौत हो गया हो, मिसकैरेज हुआ हो, वो ना कहीं इसके करीब आ जाए। यानी हमने अल्लाह की जात पे तो ईमान खत्म ही हो गया ना, फिर तो ईमान इन चीजों पे है कि ये चीजें हमारा कुछ असर कर सकती हैं, फायदा या नुकसान। अब हम कुरान में क्या पढ़ते हैं, पता नहीं क्या पढ़ते हैं हम, इन यमसस्क अल्लाहु बिदुर्रिन फला काशिफ लहू। अल्लाह ताला फरमाता है अगर अल्लाह तुम्हें कोई तकलीफ देना चाहे ना, कोई उसको उस तकलीफ से को हटा नहीं सकता फिर, और अगर वो तुम्हें कोई खैर देना चाहे तो वो हर चीज पर कादिर है, कोई उसको उससे मना नहीं कर सकता कि आप क्यों इसको ये खैर पहुंचा रहे। लेकिन हमने अपनी जिंदगियां क्या बना ली है, तो हम मात ऐसा करेंगे, ऐसा किसी ने लिखा भाई हम मुर्गे पालते हैं, तो किसी ने कहा कि अगर वो बोलता है तो फकर आ जाता है, तो इसलिए ये कहाँ से आई, झाड़ू इस वक्त ना दो, उस वक्त ऐसे ना करो, पता नहीं क्या क्या चीजें हमने बनाई हुई है, और ये एक नहीं बेशुमार है। कोई चीज बैड लक ला रही है, आंख फड़क रही है तो अब बैड लक हो जाएगी, इस हाथ में खारिश हो रही है तो अब पता नहीं गुड लक होगी, कोई पैसा आएगा, फलानी चीज हो रही है तो क्या,
खुदा के लिए इनसे निकलो, तुम्हारा अल्लाह पर ईमान है कि हर नफा और नुकसान सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। वो नफा देना चाहे तो कोई नुकसान नहीं दे सकता, वो नुकसान देना चाहे तो कोई नफा नहीं कर सकता तुम्हारे लिए, चाहे सारी दुनिया मिल जाए। तो फिर ये किसी के परछाइयां पड़ने से, किसी के आपकी शादी में आ जाने से, किसी का किसी नंबर का या महीने का, यही अगर नफे नुकसान देने लगे तो फिर बताएं तौहीद किधर चली गई आपकी? कहाँ है तौहीद? अल्लाह अकबर। दुल्हन रुखसत हो रही तो वो चावल पीछे फेंक रही। चावल क्यों फेंक रहे हैं? नहीं, घर में रिस्क की कमी ना हो जाए। मुर्दा मुर्दे के चारपाई के नीचे रिस्क रख रहे हैं, पता नहीं क्या क्या चीजें उसके नीचे डाल रहे हैं कि ये चला जाएगा तो इसके पीछे से रिस्क की कमी ना हो जाए। तो ये देते थे रिस्क आपको क्या कि ये रुखसत हो गई बच्ची तो अब रिस्क में कमी ना आ जाए? हमारी जिंदगियां भरी पड़ी हैं तोहम परस्ती से। ट्यूसडे के दिन काम नहीं होता, वेंसडे के दिन बुध हर काम सुध, ये सुना मैं, मंगल में हर काम खराब हो जाता है। अल्लाह अकबर। इस्लाम तो आया था इन तौक और इन चीजों को से निकालने के लिए, हमें जिन्होंने हमारी जिंदगियों को मुश्किल किया हुआ, लेकिन हमने क्या कर लिया, फिर वही काम शुरू कर दिए। कोई अपने जहेज में, वो कहते सफेद सूट ना लेकर आए वरना तो उसका शौहर ही मर जाएगा, पता नहीं क्या वो सोग वाला वो पहन लिया। अल्लाह अकबर, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी। फिर आज हमने जो ज्यादा जरा चलो दीन की तरफ आ गए, उन्होंने कहा भाई बाहर से फालें क्यों निकलवानी, हम कुरान से ही फालें निकालने शुरू कर देते हैं। अच्छा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल भी तो काम पढ़ते थे ना कि ये किया जाए या नहीं किया जाए, तो कुरान आपसे ज्यादा कौन जानता था? क्या आपने फालें निकाल ली कुरान से? चलो सहाबा कराम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से चले गए, उनको भी तो कितने मसाइल होते थे, उन्होंने भी तो कहीं शादियां करनी, कहीं सफर करने, कहीं कारोबार करने, उन्होंने भी तो ये काम करने होते थे, तो वो कोई फाले निकाल लेते कुरान से? उन्होंने भी ना निकाली। लेकिन हमें कितना बड़ा एक फन आ गया, किसी ने कहा इस्तखारे करने तो बड़े मुश्किल काम है, हमसे नहीं इस्तखारे होते, फिर बाद में हमें ख्वाबें आती हैं वो तो हमें समझ ही नहीं आती, तो हम तो बस सीधा सीधा इस तरह बस को किसी ने हमें बता दिया ऐसे करके इतने इतने पे देख लो, पता नहीं किस तरह से वो पता नहीं कौन सी लाइन, सातवीं लाइन, उसमें सातवां लफ्ज और पता नहीं कैसे करके, तो वो बस आपका जवाब है। रब इन पे वहियां उतरी, किसने इनको बताया ये, किसने बताया? क्या हमने बना के रख लिया इस इस्लाम को, इस दीन को, जो एक सिंपल दीन है, एक स्ट्रेट दीन है, वो किधर हम जा चुके हैं? ये तो हम परस्ती ना हिंदुओं में बहुत है, और वहां से सारी चीजें हमने लेनी, हर कल्चर में इसी तरह, अरबों में कोई और किस्म की है और दूसरों में कोई और किस्म की है। तो जो ईमान वाला है ना, पक्का ईमान वाला, तो जिब्त और ताबूत पे ईमान ही नहीं रखता। अल्लाह ताला तो इनके ऊपर हैरत करके फरमा रहे हैं, इनको देखो जरा इनका दिमाग क्या है कि किताब होते हुए ये जिब्त और ताबूत के ऊपर ईमान रखते। तो हमारे ऊपर भी फिर आफरीन है कि कुरान जैसा कलाम होते हुए हम जिब्त और ताबूत में पड़े हैं, हमें वो बाबा बहुत लगता है कि वो हमारे काम करके देगा, और उसके पास चली जाऊंगी तो क्या होगा, किस्मत बदल जाएगी। और शादी ना करना, पहले पहले किसी से हिसाब निकलवा लो कि रिश्ता ठीक भी है कि नहीं, इस्तखारों वगैरह को छोड़ो, तो इस्तखारे की समझ ही नहीं है ना, इसलिए भी ये काम करते हैं। अपने दीन का पता नहीं तो जिब्त और ताबूत में ही पढ़ेंगे ना, जब जब याद रखें दीन से दूरी होगी ना तो फिर ये काम आएंगे। यही चीजें हैं जो जिंदगियों में होंगी, यही मशगले अपनाएंगे। तो अगर हमने पहले ऐसे काम किए हैं, उनसे तौबा इस्तगफार करें, आज ही तौबा करें, और आइंदा के लिए अपने साथ वादा करें कि कभी नहीं करना। इन चीजों की प्रमोशन बहुत होती ना ऐसे माशरों में, जाहिर है दीन तो है नहीं तो फिर यही चीजें चलेंगी ना, फिर यही इसके इश्तिहार आएंगे ना, तो माशरा का पूरा ही दीन से नावाकिफ है, तो फिर इनकी दुकानें और इनके कारोबार, जाहिर है आप खुद सोचें जिस माशरे में इन लोगों के कारोबार इतने चल रहे हैं कि उनको टीवी पे बाकायदा बड़े उससे बिठाया जाता है कि ये माहिरे इल्मे नजूम है, ये माहिरे फलां हैं, ये पता नहीं क्या क्या के माहिर हैं, उनको बिठाया जाता है बड़ी इज्जत के साथ, तो सोचें कि उस माशरे के बिगाड़ का क्या हाल होगा वहां पे बिलीव क्या है, और इनकी बाकायदा यानी मशहूरी की जा रही है, इनका इश्तिहार दिया जा रहा है। हम तो जो चीज टीवी पे देख लेते हैं तो हमारे दिमाग पे इतना असर हो जाता है कि ये तो टीवी पे भी आए थे, तो ये तो बहुत ही अच्छे ही कोई होंगे, बहुत ही जबरदस्त होंगे, फिर हम उनके पीछे चल पड़ते, इसका इश्तिहार देख लेंगे वो, फिर बस कोई
इंतहा नहीं है हमारे इसकी। तो ये तागूत के ऊपर चलते, तागूत तो है ही ऑपोजिट, ऑपोजिट ताकतें जो अल्लाह के रास्ते से खुद भी बिगड़ी नहीं है, बगावत की भी है और लोगों को भी हटाते हैं, उनके पीछे चलते हैं, उन पे ईमान रखते हैं। अल्लाह हू अकबर। और इब्ने अब्बास ने जिप्त से फरमाया कि इससे मुराद है टूने टूट के, वो मुराद है। वो यकूलून लिल्लदीन कफरू, और वो कहते हैं उन लोगों से जिन्होंने कुफर किया, हा उलाई अहदा मिन अल्लदीन आमनु सबीला, कहते हैं ये तो काफिर जो थे ना, वो इनके पास जाके कहते थे आप बताएं ना कि हम ज्यादा सही हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो ज्यादा सही है। वो कहते तुम क्या करते हो, वो कहते देखिए ना हम तो हाजियों को पानी पिलाते हैं, हम तो जिबा कर करके जानवर लोगों को खिलाते हैं, हम तो गुलामों को आजाद करते हैं, हम सिला रहमी करते हैं। तो वो कहते वो क्या करते हैं, यहूदी कहते वो क्या कर, उनसे क्यों पूछने जाते थे, वो पढ़े लिखे थे ना, वो किताब वाले थे ना, तो इसलिए उनसे पूछने जाते थे। तो कहते वो असल में ये करते हैं, वो तो रिश्ते तोड़वाते हैं, रिश्तों को तोड़वाते हैं, वो ऐसे हैं। तो वो कहते बस फिर तुम ही हिदायत पे हो, असल सीधे रास्ते पे तो तुम ही हो। हालांकि इनको सोचना चाहिए कि ये खुद किताब वाले थे, तो ये जानते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे नबी हैं, ये जानते थे, इनसे ज्यादा तो कोई जानता नहीं था। लेकिन फिर भी सोचो इनकी अकलों का और इनकी दीन में किस कदर जवाल आ गया था कि वो जो हक पे हैं उनको कह रहे हैं उनसे तो ज्यादा तुम ही हिदायत पे हो, यानी जो बुत पूज रहे हैं उनको कहते हैं तुम हिदायत पे हो। जैसे आज भी हम बहुत दफा कह देते हैं ना मुसलमानों से ज्यादा तो ये अच्छी हैं, कैसे हो सकता है मुसलमानों से ज्यादा वो अच्छी हैं जो कि शिर्क करने वाले हैं, तुमने ओवरऑल ही मुसलमानों से ज्यादा उनको अच्छे कर दिया। हाँ कोई ये कह सकता है कि किसी का अखलाक ज्यादा अच्छा है, इसके ये किरदार में ये चीज बहुत अच्छी है जो फला मुसलमान से ज्यादा अच्छी है, अखलाक में अच्छा हो सकता है, कोई किरदार में अच्छा हो सकता है, मगर ओवरऑल कैसे कह सकते हैं कि ये मुसलमानों से अच्छी हैं, हम तो इतने इतने बुरे हैं। और फिर आगे से माशाल्लाह कुछ लोग ना ऐसे भी कहते हैं हाँ आप कहते हैं ये जहन्नुम में जाएंगे, वो तो हमसे ज्यादा अच्छे हैं, वो कैसे जहन्नुम में जाएंगे। तो इससे पता चलता है कि हमारी दीन की समझ क्या है, सोचे क्या हमारी दीन की समझ है कि यहाँ पे अल्लाह ताला ने फरमाया इन्ना अल्लाह ला यग़फिरु अन युशरा कभी व यग़फिरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा, और ये कहते हैं वो तो हमसे ज्यादा अच्छे हैं, आप क्यों कहते हैं कि वो जहन्नुम में कभी जाएंगे, यानी शिर्क करना तो कोई बात ही नहीं है ना, बस उन्होंने अस्पताल बना दिए, यतीम खाने बना दिए, तो बस ठीक है। वह यकूलूना लिल्लज़ीना कफरू अहाउलाई अहदा मिन अल्लज़ीना आमनू सबीला, यानी इनके देखो कि कैसी मत मारी भी है कि बुत परस्तों को कह रहे हैं कि वो हिदायत पे ज्यादा हैं, और एक अल्लाह के मानने वालों को कह रहे हैं कि वो तो हिदायत पे नहीं है, वो तो तुमसे कम ही है। उलाइक अल्लज़ीना लानहुमुल्लाह, ये वो लोग हैं जिन पे अल्लाह ने लानत कर दी, व मन यलअनिल्लाह फलन तजिद लहू नसीरा, इसके ऊपर अल्लाह लानत कर दे ना फिर उसका कोई मददगार नहीं, अल्लाह ने इनको अपनी रहमत से दूर कर दिया, यही मतलब है ना लानत का, रहमत से दूर कर देना। अब ये मतलब नहीं है यहाँ पे कि अल्लाह ने लानत कर दी, यानी अल्लाह उनके ऊपर लानत भेज रहा है कि अल्लाह ताला कह रहा है उनके ऊपर लानत हो, लानत का मतलब ये कि अल्लाह ने बस अपनी रहमत से हटा दिया इनको। जब अल्लाह किसी को अपनी रहमत से हटा दे तो फिर उसकी मदद खत्म हो जाती है, यानी अब अल्लाह की मदद इनके साथ नहीं होगी। ठीक है, जब कोई इंसान किसी इंसान पे लानत करता है ना तो ये फिर बद्दुआ होती है फिटकार की, कि इसके ऊपर फिटकार हो, ये अल्लाह की रहमत से दूर हो जाए, लेकिन जब अल्लाह ताला करता है तो इसका मतलब अल्लाह ने उनको दूर कर दिया। मगर ये है कि कोई इंसान भी दूसरों पे लानत ना करे, क्योंकि ये बहुत बड़ी बद्दुआ है, ये ऐसे खत्म नहीं हो जाती कि किसी ने किसी के ऊपर लानत की तो वो यहीं पे उसके जो कलिमात हैं वो मतलब खत्म हो जाए यहाँ पे, ऐसे नहीं होता। वो जो कलिमात है ना
कि कोई कहता है इसके ऊपर लानत हो फलाने के मुंह पे लानत हो फलाने का, ये कलिमात जो है ना ये आसमान की तरफ चढ़ते हैं, आसमान की तरफ चढ़ते हैं। हाँ, अब वहां के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं इन कलिमात के लिए। तो फिर अल्लाह ताला फरिश्तों से पूछता है कि ये क्या बात है, ये वो लानत वहीं पे फिरती रहती है, फिरती रहती है, कभी इधर जाती है कभी उधर जाती है, छोटी बात नहीं है जो हम मुंह से निकालते हैं, औरतें वो तो बहुत लानत करती हैं ना, इसलिए हमें बहुत समझने की जरूरत है। तो फिर वो फिर रही होती तो अल्लाह ताला पूछते हैं ये क्यों, तो फरिश्ते बताते हैं कि या अल्लाह ये फलां ने वहां फलां के ऊपर लानत की है। अब अल्लाह ताला फरमाता है जिस पे लानत की गई है अगर तो वो उसका हकदार है, उसका मुस्तहिक है, तो फिर उस पर डाल दो लानत, अगर वो उसका मुस्तहिक नहीं है तो कहने वाले पे डाल दो। लिहाजा बाज दफा इंसान अपने आप पे खुद ही लानत डाल रहा होता है, ये छोटी बात है। अब जैसे मसलन शैतान के ऊपर लानत, तो वो तो ठीक है, हम लानत का एक मुस्तहिक। बाज दफा लोग अपने बच्चों पे ही लानत भेज रहे होते हैं, बाज दफा अपने और किसी कोई प्यारे रिश्ते हैं उनके ऊपर ही लानत भेज रहे होते हैं और खुद नहीं सोचते कि हम क्या कह रहे हैं, या किसी और के ऊपर भी भेज रहे होते हैं, प्यारे ना भी हों किसी और पे भी, लेकिन वो उसका मुस्तहिक नहीं है, वो इस वो नहीं है, डिजर्व करता नहीं है कि आप उसके लिए ये बात कहें, तो फिर वो वापस ही आपके ऊपर आ जाएगी। तो फिर केयरफुली बात करनी चाहिए, जुबान का इस्तेमाल भी से देखें ऐसे कितना जरूरी है कि इंसान केयरफुल रहे। ये सारी जो बातें हम पढ़ रहे हैं, कहीं शेखियां मारनियां, कहीं लानतें भेजनी, अम लहुम नसीबु मिनल मुल्की फइदन ला यूतून अन्नास नकीरा, अगर इनके पास होता ना कुछ हिस्सा भी अल्लाह की बादशाहत में से, खास तौर पे यहूदियों को कहा जा रहा है, मगर जो भी इस किरदार के हामिल होंगे वो इसमें आ जाते हैं। याद रखें कि कुरान पाक का जो एक 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 शाने नजूल होता है ना किसी आयत का, तो अब ये मतलब नहीं कि वो स्पेसिफिक उसी बात के साथ बिल्कुल जुड़ गई है और अब ये किसी और के ऊपर अप्लाई नहीं हो सकती, नहीं, एक उसका होता है स्पेसिफिक उस वक्त जब वो नाजिल हुई तो क्या हालात थे, एक कहता है उसका एक अमूमी माना कि जो भी फिर वैसा होगा फिर वो भी उसी में आएगा। अब वो कहा गया कि क्या इनके लिए एक हिस्सा है बादशाह में से, ये है, इसको कहते हैं एक सवालिया अंदाज है, इस्तफा में इनकारी कहते हैं इसको, इस्तफा में इनकारी। जैसे हम कहते हैं क्या तुम गंदे बच्चे हो, तो मतलब क्या होता है, आप पूछ थोड़ी रहे हैं तुम हो के नहीं हो, बल्कि है कि नहीं हो ना तुम गंदे बच्चे, तो क्या तुम गंदे बच्चे हो, ये कहने का मतलब ही ये है कि तुम तो नहीं हो ऐसे। तो इसी तरह ये कहा गया अम लहुम नसीबुम मिनल मुल्क, क्या इनके पास एक हिस्सा है बादशाहत का, तो पूछा नहीं जा रहा उनसे कि आपके पास है कि नहीं, बल्कि यानी नहीं है इनके पास कोई भी हिस्सा बादशाहत का, अगर होता फइदन ला यूतून अन्नास नकीरा, तो ये लोगों को एक नकीर भी ना देते। अब नकीर क्या चीज है, पहले फतीला की बात आई अब नकीरा की बात आई, तो ये भी खजूर के साथ ही रिलेटेड है, तो दोनों का आपको फर्क पता होना चाहिए। फतील क्या था, गुठली के अंदर जो सुराख में जो धागा होता है। नकीर क्या है, नकीर ऊपर आप देखिएगा जो इसको खड़ी करके खजूर की गुठली को, तो आप देखेंगे ऊपर एक सुराख होता है, एक मतलब बिल्कुल समझ लें तिल बराबर साइड में ना, उसकी डॉट कह रहे हैं, नुक्ता कह दें, नकीर से नुक्ता मेरे ख्याल याद रहेगा, इस ये आसान तरीका है ना याद रखने का। तो वो जो नुक्ता है, इतनी बराबर भी चीज ये किसी को ना देते अगर इनके हाथ में, तो वाकई आप दुनिया में देखें अल्लाह अकबर, इंसान कहता है इसीलिए दुआ करता है, या अल्लाह मुझे कभी किसी का मोहताज ना करना, क्योंकि अगर इंसानों के हाथ में रिस्क हो ना तो वो तो किसी को भी ना कुछ दे, अगर कोई किसी को दे भी देता ना कोई चीज जरा सी भी दे देता है, तो उसके बाद 10 दफा पूछते हैं, हाँ नहीं उनके घर पे तो टीवी भी है, उनके घर पे तो फ्रिज भी है, वो तो मशीन भी रखते हैं, अब हम उनको क्यों दे, यानी उसकी इतनी बदतर हालत हो जाए कि बिल्कुल सड़क के ऊपर बैठा होगा और ना सर पे छत होगी ना कुछ होगा, तो तब देंगे, हम क्यों दें इसको, हम कितनी ऐसी बातें करते हैं, फिर किसी को जरा सा देते हैं, हालांकि कौन से हमने उसको खजाने दे देने होते, पर फिर भी हम जेब से निकालते भी कितना वो करते हैं, हालांकि इसका अजर हमें मिलना होता है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये अगर क्या इनके पास एक हिस्सा है बादशाहत का, अगर होता तो इन्होंने तो किसी को कुछ भी नहीं देना था, इनके ये कंजूसी के हाल है। इन बुखल की पहले भी बात आई थी ना कि ये खुद भी वकील है और दूसरों को भी रोकते हैं कि तुम भी ना दो, तो जो भी ऐसी इस किस्म की क्वालिटीज रखेगा अपने अंदर, तो उसने वही काम किया जो यहूदियों का काबिल मुजम्मत कहा जा रहा है, कि इतना बुखल कि किसी को जरा सी भी चीज देने के रवादार नहीं है। अम यहसुदून अन्नास अला मा आताहुमुल्लाहु मिन फदलि, या वो हसद करते हैं लोगों से जो अल्लाह ने उनको अपने फजल से दिया, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो नबूवत मिल गई इसके ऊपर उनको बड़ा हसद था, इनके यहाँ क्यों आ गई, अरबों में क्यों आ गई, ये तो हमारे अंदर बनी इसहाक में आनी चाहिए थी, बनी इसराइल में आनी चाहिए थी। तो हसद क्या चीज होती है, पहले भी मैंने आपको बताया था, हसद मतलब होता है किसी के पास नेमत देख के उसके नेमत के जवाल की तमन्ना रखना कि इससे छिन जाए ये चीज। तो इनको हसद है, हालांकि इन्होंने कौन सा अपने नबियों के साथ कोई बहुत अच्छा सलूक किया था कि जो ये कहें कि हमारे पास ही आते तो पता नहीं हमने क्या करना था। इन्होंने तो जो आगे आ रही है बात कि जो सलूक किया वो तो आपको पता ही है, आपने सारा पढ़ा है कि ये क्या करते थे। तो ये क्या हसद करते हैं लोगों से जो अल्लाह ने उनको अता किया और अपने फजल से दिया, किसी की भी मिल्कियत नहीं है, जो भी चाहे इज्जत के खजाने हैं, चाहे रिज़्क के खजाने हैं, चाहे तरक्कियों के खजाने हैं, कोई भी नेमत है वो अल्लाह का फजल है ना, अल्लाह का फजल है ना, कोई किसी की अपनी काबिलियत कोई भी चीज नहीं है। तो फिर ये तकसीम कौन करता है, कौन देता है, किसी को इज्जत देना, मकाम मर्तबा देना, कोई स्टेटस देना, कोई माल देना, ये किसका फैसला होता है? ये नहीं कि कोई लायक बहुत था इसलिए उसको मिल गया, फलाने के अंदर बड़ी ये खूबी थी इसलिए, वो भी खूबी भी तो अल्लाह ने ही दी ना। तो असल में बात तो क्या है कि अल्लाह ही है देने वाला ना। अब कुछ लोग किसी की ऐसी चीज को देखकर वो उनके अंदर ना एक कुढ़न होती है, जलन होती है और गुस्सा एक आता है कि क्यों इसको मिला, और उनको दिल चाहता है कि इसको ना मिले, इसको क्यों ये खैर मिल गई। अब पहले तो पहले बात आई ना कि देखें, अब यहां पे एक बात आ गई हसद की और पहले बात आई बुखल की। अब दोनों में एक चीज कॉमन क्या है बताएं, बुखल और हसद में एक चीज क्या कॉमन है? एक चीज जो कॉमन है वो ये है कि किसी को खैर ना मिले, बस किसी को ना खैर मिले। अव्वल तो मिले ही नहीं, अगर मिल गई है तो छिन जाए, बस खत्म हो जाए उससे, समझ आई बात? तो ये दोनों इनकी क्वालिटीज थी। आज भी दुनिया में यहूदी बहुत स्टिंजी होते हैं, बहुत बखील हैं, वो पैसों को बहुत जमा करते हैं। और हसद देखें, आए तो खैर मुसलमानों में ही हसद कोई कम नहीं है, ये कि घर में रहने वाले बहन भाइयों में हसद, खानदानों में हसद, दोस्त अहबाब के अंदर हसद, हसद ही हसद है। और हसद कबीरा गुनाहों में से है, यानी अगर इंसान तौबा नहीं करेगा ना, तौबा के बगैर मर गया तो कबीरा में से है। फिर भी हम देखें कि कहीं किसी को कोई भलाई मिल जाए तो फिर हमारे दिलों के हाल क्या होते हैं, दिल की कुड़न का हाल क्या होता है, दिल ही दिल के अंदर वो लावा पकता है। और खुशी तब होती है जब किसी दिन वो आके ये कहे कि हाय ये तो इस तरह से हो गया। इसीलिए मिन शर्री हासिदिन इज़ा हसद, ये हासिद के हसद से भी, ये इसका भी शर होता है, इससे भी अल्लाह की पनाह में आने के लिए दुआ की गई है, ठीक है? तो ये इंसान को नुकसान देता है, दूसरे का हसद करना, किसी को अच्छा पहनता देख लिया, किसी को अच्छा रहता सहता देख लिया, किसी के हस्बैंड को अच्छा देख लिया, किसी की बड़ी नौकरी और तरक्कियां देख ली, तो ये चीजें इंसान को जो अंदर, अब मानेगा तो कोई भी नहीं कि मैं हासिद हूं, लेकिन वो ना हसद कहीं ना कहीं आ जाता है, जुबान से ऐसी बातें निकलने लगती हैं जो उसके खिलाफ हैं, और उसकी चीज की बुराइयां करने लगते हैं, इल्जाम तराशियां करने लगते हैं, उसको लेट डाउन करने लगते हैं। तो इसका फिर इलाज क्या करें? एक तो सबसे पहली बात है कि उसको बरकत की दुआ दे दें, पहले भी मैंने बताया था, उसको बरकत की दुआ दे, बारकल्लाहु फी। दूसरे ये है कि अपने लिए वो चीज मांग ले, अल्लाह ताला ने फरमाया ना कि ये मेरा ही फजल है ना, कि मैंने ही दी है, तो अल्लाह से मांग ले। और तीसरी चीज, अपने आप को यह समझाए इंसान कि ये अल्लाह की तकसीम है, और अगर मैं अल्लाह की तकसीम पे राजी नहीं होती तो मैं अल्लाह के फैसलों से राजी नहीं, ठीक है? तो ये जो फजल है जो अल्लाह जिस रब ने उसको दिया है वो मुझे भी दे सकता है। चौथी चीज ये कि इंसान ये सोचे कि हर नेमत के साथ आजमाइश है, और ये भी किसी के लिए आजमाइश हो सकती है, मुझे क्या पता, अगर मुझे ये चीज मिल जाती तो पता नहीं मैं इसको संभाल ना सकती, और यही मेरे लिए जवाल का बायस बन जाती, पता नहीं अगर मेरे पास ये चीज होती तो मैं क्या रिएक्ट करती, मैं अल्लाह से दूरी कहीं ना हो जाती, हो सकता है ये चीज मेरे लिए बेहतर ना होती। हाँ, तो अपने आप को इस तरह से समझाना चाहिए, ना कि अंदर जल जल के और कुड़ कुड़ के, और फिर उसके बाद इंसान अपने आमाल को भी जाया कर दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर नेमत वाला हसद किया जाता है। जहाँ नेमतें आती हैं ना, वहां पे हासिद भी पैदा हो जाते हैं, जिनसे फिर एक आंख नहीं उनको भाता कि ये क्यों इसको मिला। ठीक है, तो बिल्कुल ये है कि ज़करिया अलैहि सलाम ने हजरत मरियम के पास जब फल देखे थे, तो वो जले कूड़े नहीं थे कि ये क्या कल की बच्ची है, इसको इतना कुछ मिल गया। हाँ, बल्कि उन जब हजरत मरियम ने फरमाया कि ये अल्लाह ही का फजल है, तो खुद भी अल्लाह से मांग लिया। वो अल्लाह के खजानों पे नजर रखे, अल्लाह के खजाने बड़े वसी हैं, वो चाहेगा तो आपको उससे भी ज्यादा दे देगा, मगर उससे ना जले कूड़े। और फिर इंसान अपनी नियमतों के ऊपर भी नजर करे कि मुझे भी तो अल्लाह ने ये चीजें दी हुई हैं जो शायद उसके पास भी ना हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे अंदर भी पहली उम्मतों की सी खसलतें आ जाएंगी, हसद और बोझ। हसद और बोझ उनमें भी था और आज देखें। और फरमाया, हसद से बचो, ये नेकियों को इस तरह खा दे जाता है जैसे आग सूखी लकड़ियों को खा जाती है। तो ये ना हो कि हमारी नेकियां ही सारी जल के खत्म हो जाए और हम समझे कि हम बड़े नेक हैं। फकद आतैना आला इब्राहिम अलकिताब वल हिकमत व आतैनाहुम मुल्कन अज़ीमा। ये उनसे क्यों हसद कर रहे हैं? ये नहीं देखते हमने आले इब्राहिम को किताब भी दी, हिकमत भी दी, उनको मुल्क अजीम भी दिया। यानी मैंने जैसे आपको बताया कि इनके पास, खुद के पास भी तो पैगंबर आए थे, और एक नहीं बेशुमार पैगंबर आए। आले इब्राहिम में देखें आप, इसहाक अलैहि सलाम की औलाद में से याकूब अलैहि सलाम, जिनको लकब इसराइल था, उनके अंदर इतने पैगंबर होते थे, एक एक वक्त में बहुत सारे पैगंबर होते थे। किताबें भी इनके पास आई, हिकमत की तालीम भी आई, उन इनको मुल्क अजीम भी दिया गया। इन्हीं में तो दाऊद अलैहि सलाम और सुलेमान अलैहि सलाम आए थे, और जैसी उनको हुकूमत मिली वैसी हुकूमत किसी को भी नहीं मिली, कभी नहीं मिली। कि सुलेमान अलैहि सलाम ने दुआ की थी कि यार मेरी जैसी बादशाहत किसी और को ना देना मेरे बाद। वो जैसी, और वाकई देखें उनकी हुकूमत ना सिर्फ इंसानों पे, जिन्नात पे भी थी, हैवानों पे थी, परिंदों के ऊपर थी। तो इतना कुछ तुम्हें भी तो मिला हुआ है। और इनका तो, इनकी आप हिस्ट्री पढ़ें तो इनका एक पीरियड आता है किंग्स पीरियड, जिसमें बड़े बड़े बादशाह, सदियों पे मुहित है वो पीरियड, बड़े बड़े बादशाह आए। तो तुम्हें क्या नहीं मिला जो तुम दूसरों से हसद कर रहे? असल में होता यह कि इंसान अपनी चीजों को तो भूल जाता है, किसी को एक भी मिले ना तो उसका दिल जल भुन जाता है कि उसको क्यों मिल गई। फमिनहुम मन आमन बिही व मिनहुम मन सद्दा अन। तुम्हारे पास भी देखो किताबें भी आई, बादशाहतें भी मिली, लेकिन फिर भी इनमें ऐसे लोग थे, बाज तो ईमान लाए और बाज ऐसे थे जो रुक गए। और सद्दा के अंदर खुद भी रुकना होता है और दूसरों को भी रोकना होता है, ना खुद मानते थे ना दूसरों को मानने दिया। वकफा भी जहन्नम असाईर, और काफी है जहन्नम की भड़कती हुई आग इनके लिए। इन लदीन कैफरू भी आयातीना। ये भी असल में उन्हीं के कॉन्टेक्स्ट में बात चली आ रही है, लेकिन मैंने जैसे आपको बताया कि सिर्फ उनके लिए नहीं, जो भी कुफर करेगा अल्लाह की आयात के साथ, अल्लाह की आयात का जो भी इनकार करेगा, अल्लाह का हुक्म आ जाए और उसके हुक्म को मानने से कहे हम, मैं तो नहीं मानता, मैं तो नहीं मानता कि जकात होनी चाहिए, मैं तो नहीं मानता कि नमाज है। एक होता है ना पढ़ना, एक होता है ना कोई चीज देना, ज़कात अदा नहीं की या नमाज नहीं पढ़ी अपनी कोताही की वजह से। एक बंदा कहता है मैंने मानना ही नहीं, मैं नहीं मानता इसको, ये उनकी सजा है। चाहे वो यहूदी हो, चाहे वो अपने आप को मुसलमान कहता हो, चाहे वो कोई भी हो, लेकिन जब इन हिदायत का पैगाम आता है ना, तो इंसानों के तीन ग्रोह होते हैं। एक मान लेता है, पूरी तरह मान लेता है, दूसरा कहता है नहीं मैंने नहीं मानना, वो अपने आप को कोई भी कहता रहे। तीसरा वो होता है जो ऊपर ऊपर से दिखाता है कि मैंने मान लिया है, अंदर से नहीं माना होता। जो पहला ग्रोह है जो पूरी तरह मान ले, सिर्फ वो जन्नती है, बाकी दोनों ग्रोह जहन्नमी है। चाहे ऊपर ऊपर से कहते रहे हमने मान लिया, हमने मान लिया, अंदर से कोई नहीं माना, मुनाफिक है ना वो। तो सौफ नुस्लीहिम नारा अन करीब, हम दाखिल करेंगे उनको आग में। अल्लाह अकबर, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। कुल्लमा, जब कभी, नदीजत, पक जाएंगी, गल के बिल्कुल, जिसको कहते हैं ना, मैंने जैसे आपको मिसाल दी कि गोश्त गल के इतना रेशा रेशा हो जाए कि हाथ लगाएं तो वो झड़ जाए, ऐसा पक जाना, जुलूदुहुम खाले उनकी, बदलना हम बदल देंगे हम जुलूदन खालों से, गैरहा इनके अलावा, किस लिए क्यों ऐसा किया जाएगा, लियज़ूकुल अदाब, ताकि वो चखते रहें अजाब को। और आज साइंस ने ये प्रूव किया है कि इंसान का जो जो पेन है ना, पेन वो सिर्फ ये स्किन पे होती है, अगर स्किन ना हो तो पेन का एहसास खत्म हो जाता है, ये आज साइंस कहती है। और अल्लाह ताला ने वो बात 1400 साल पहले फरमाई कि जिल्दों पे जिल्दें इनकी बदली जाएंगी ताकि वो अजाब को चखते रहें, क्योंकि अगर एक जिल्द खत्म हो गई आग से तो फिर उसके बाद तो अजाब की सेंसेशन, उसकी जो जो उसका उसकी जो महसूस होना है वो खत्म हो जाएगा। तो इसलिए वहां पे एक खाल नहीं होगी, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी, एक उतरती जाएगी क्योंकि वो गल जाएगी, बिल्कुल पक जाएगी, और उसके बाद दूसरी आ जाएगी ताकि अजाब की तकलीफ उनको पहुंचती रहे। और ये ऐसा अजाब नहीं कि दुनिया की आग का अजाब हो, दुनिया की आग से भी हम पनाह मांगते हैं कि अल्लाह दुनिया की अजाब आग जो है, ये जो जलाती है ना, इंसान उसको भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर एक हाथ जल जाए कभी खाना बनाते हुए, एक उंगली जल जाए, रात भर नींद नहीं आती इंसान को, ज्यादा जल जाए ना, जो लोग ज्यादा जल जाते हैं वो तो फिर सरवाइव भी नहीं कर पाते, वो तो फिर अस्पताल में ही दम तोड़ देते हैं, कहते हैं अभी इनके इतने डिग्री तक इसका इसके बर्न्स हो गए तो ये अब नहीं सरवाइव कर सकता। दुनिया की आग से तो इंसान मर जाता है ना, आखरत की आग से मरेगा नहीं, वो रहेगा जिंदा ही, मगर जलने का एहसास होता चला जाएगा। और जला हुआ जो जो जगह होती है उसकी जो तड़प और जलन, अब सोचे जरा सा पानी इंसान पे गर्म गिर जाए ना तो कितनी एकदम इंसान तड़प उठता है, ऐसा लगता है जैसे करंट पूरी बॉडी के अंदर चला गया। शावर में आप कभी देखें, अगर आपके ऊपर कोई एकदम से गर्म पानी आ गया, या आप बर्तन धो रहे थे एकदम गर्म पानी आ जाता है, तो एकदम आप अपना हाथ हटाते हैं, एक स्प्लिट सेकेंड में आप अपना हाथ पीछे कर लेते हैं, देर नहीं लगती। वो क्या हाल है कि एक इंसान पूरा का पूरा आग में जल रहा है और एक के बाद एक स्किन आ रही है, और ये कितनी दफा होगी, कुल्लमा जब कभी पकेंगी, कितनी दफा ये सारा कुछ होगा, क्या ऐसा होगा कि आग जलाती रहे जलाती रहे जलाती रहे, फिर कुछ अरसा गुजर जाए, वो जल जाए जब स्किन, तो उसके बाद फिर दूसरी स्किन आ जाए, नहीं, एक दिन में 70,000 टाइम्स वो ये खाल जलेगी और फिर दूसरी नहीं आएगी एक दिन में। और हजरत मुआज बिन जबल फरमाते हैं कि एक एक साथ में 100-100 बार बदली जाएगी, एक एक साथ में, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी। और फिर सोचें जरा कि क्या कोई ख्वाहिश, कोई चीज इतनी इंसान को महबूब हो सकती है कि वो उसकी खातिर आग का सौदा कर ले और कहे कोई बात नहीं है, अगर इस आग में चले भी जाएं तो कोई बात नहीं है। और इंसान कैसे होगा, ये वाला जिस्म नहीं हुआ, जाहिर है ये वाला जिस्म तो सह ही नहीं सकता इस सब को, जाहिर कोई स्पेशल ही अल्लाह ताला देंगे जो उस आग में भी मरेगा नहीं, तो वो जिस्म कैसे होंगे। मुसनद अहमद में है कि जहन्नमी जहन्नम में इतने बड़े बड़े बना दिए जाएंगे, इतने उनके जिस्म बड़े हो जाएंगे कि उनके कान की लौ से कंधे तक 700 साल की मुसाफत होगी, और उनकी खाल की जो मोटाई होगी ना, कितनी थिक होगी ये स्किन, 70 जरा 70 हाथ मोटी होगी ये स्किन, और उनके दांत, एक दांत ओहद पहाड़ के बराबर होगा, यानी इंसान बड़ा होगा तो अजाब भी तो ज्यादा बॉडी के ऊपर होगा ना, अल्लाह ताला माफ करे। और ये क्या सिर्फ उनके लिए है जो कुफर करते हैं अल्लाह की आयात का, उनके लिए तो है ही है, जो भी जहन्नुम में जाएगा उसका यही अजाब है, जहन्नुम की आग जलाती ही ऐसे है, उसका काम ही ऐसे है जला देना। इस तकलीफ की शिद्दत को कोई इंसान कैसे सोचने के ऊपर भी ना, सोच पे भी इंसान सोचता भी है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, तो इसको बर्दाश्त करना कैसा होगा। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी, कभी दुनिया की आग के करीबी हाथ ले जाके देखें कैसा महसूस होता है, कैसा है लगता है, और ये सिर्फ एक हाथ है। यहाँ पूरी स्किन जली हो वहां पे कैसा हो। इसके बाद इंसान को फिर अपनी जिंदगी पे नजरसानी करनी चाहिए कि जिन जिन गुनाहों के ऊपर कहा गया उनके लिए दर्दनाक अजाब, उनके लिए बड़ा अजाब, वो आग में होंगे, हम उन गुनाहों को छोड़ें, क्योंकि कोई चॉइस नहीं है, कोई चॉइस नहीं है। और ये कुरान की हक्कानियत के ऊपर एक बहुत बड़ी सबूत है कि देखो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो साइंस का नहीं पता था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो नहीं पता था कि ये स्किन के ऊपर ही जलन महसूस होती है। कैसे उन्होंने फिर इस कलाम को पढ़ा, हमें बताया, तो ये अल्लाह ही का कलाम हो सकता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नहीं है। तीसरी बात ये है कि देखें, कुराने पाक की एक आयत का इनकार भी ना, सारे कुरान का इनकार है। यहाँ पे कहा गया जिन्होंने इनकार किया अल्लाह की आयत का, तो जो अल्लाह की आयत का, ये नहीं कि पूरी बुक का इनकार कर दिया, पूरे कलाम का इनकार कर दिया, कफरू भी आयाती ना, हमारी आयत का एक आयत को भी नहीं मानना ना, सारी आयत का इनकार है। क्यों, कैसे? इसलिए कि वो एक आयत भी अल्लाह ही की तरफ से है, एक आयत, अल्लाह की बात को नहीं मानना ना, तो उसकी एक बात ना मानना सबका रद्द है।